डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 18 रोमियो 16:21-27 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 16:21-27 पर सत्र 18 है। हम पॉल के समापन को देख रहे हैं और अब हम समापन के करीब पहुंच रहे हैं, जो इस सत्र का भी समापन होगा। और वैसे मैं पहले इस बारे में बात कर रहा था कि मुझे राक्षसों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, और फिर मैंने शैतान के बारे में बात की, लेकिन यह अभी भी एक सुखद विषय नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ समय के लिए सुखद रहने वाला है। उनके सहकर्मियों का अभिवादन अध्याय 16:21-23। वह एक सामान्य पत्र पत्रिका प्रथा थी। केल्विन कॉलेज में जेफरी वाइमा ने पत्र पत्रिका के समापन प्राचीन काल में पत्रों के समापन पर लिखा है, और अभिवादन करना आम बात थी। लोगों को शुभकामनाएं और आपके सहकर्मियों की ओर से शुभकामनाएं इत्यादि। खैर, उस समय उनके पास मेल सेवा नहीं थी। रोमन सेना के पास एकमात्र प्रकार की मेल सेवा थी, और वह नागरिकों के लिए नहीं थी। इसलिए यदि आप कोई पत्र भेजना चाहते हैं, तो आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजेंगे जो यात्रा कर रहा हो। तो आपको सिसरो का यह एक पत्र पसंद आया। उसके पास भेजने के लिए एक पत्र तैयार था, और फिर वह कुछ और लिखने जा रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि वह जाने वाला है। या मेरे पास एक सीलबंद पत्र था जो आपको अगले यात्री के माध्यम से भेजने के लिए तैयार था। कोई आया तो यह अभी तुम्हें लिख रहा हूं। तो ये लोग हर समय एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। खैर, यह पत्र रोम जा रहा है। लोग इसका फायदा उठाएंगे और शुभकामनाएं भी भेजेंगे। उनमें से कुछ को रोम के कुछ लोग जानते होंगे जो कोरिंथ में थे, और साथ ही उनमें से कुछ शायद यह कहने के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहते थे, आप जानते हैं हम भी इसमें शामिल हैं। उनमें से कुछ बाद में रोम के साथ पॉल की यात्रा कर सकते हैं या ऐसा करने की सोच रहे होंगे। वैसे भी वह श्लोक 21 में तीमुथियुस की ओर से शुभकामनाएं भेजता है। खैर, तीमुथियुस पॉल का एक प्रमुख शिष्य था। 1 कुरिन्थियों 4:17 उसे अपने पुत्र के रूप में बताता है। संदर्भ में वह कह रहे हैं, आपके पास कई शिक्षा शास्त्री हैं। आपके पास कई लोग हैं जो आपको शिक्षण की ओर ले जा सकते हैं और आपको कुछ प्रारंभिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपके पास केवल एक पिता है। आपके कई पिता नहीं हैं। मैंने तुम्हें सुसमाचार में जन्म दिया, और वैसे ही तुम भी मेरी नकल करो जैसे कोई बच्चा अपने पिता की नकल करता है। और तीमुथियुस, जो मेरे मार्गों पर चलता है, तुम उससे सीख सकते हो कि मेरा अनुकरण कैसे करना है। और फिर वह इस बारे में बात करने लगता है, आप चाहते हैं कि मैं एक पिता की तरह अनुशासन की छड़ी लेकर उन्हें अनुशासित करूं। 16:10 वह तीमुथियुस के बारे में बात करता है। 1 कुरिन्थियों 2:19-22 हमने इसके बारे में पहले बात की थी। उसके जैसा कोई नहीं। 1 थिस्सलुनीकियों 3:02 तो तीमुथियुस वह व्यक्ति था जो वास्तव में पॉल का करीबी था। उसे अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, और तीमुथियुस वहां उसके साथ है क्योंकि तीमुथियुस उस समूह का हिस्सा है जो उसके साथ यरूशलेम की यात्रा पर जा रहा है। अधिनियम 20:4:16:21 में भी कोरिंथ से शुभकामनाएं भेजना। हमारे जेसन और सोसिपेटर। खैर, हम प्रेरितों के काम 17:5-9 से जानते हैं कि जेसन, संभवतः यह वही जेसन है। यह मैसेडोनियन जेसन है। जेसन थिस्सलुनीके में पॉल का मेजबान था। सोसिपेटर उन नामों में से एक है जहां आप इसे दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। छोटा संस्करण ल्यूक्सोपेटर है। दरअसल लंबा संस्करण अधिक तकनीकी है। मुझे खेद है, छोटा संस्करण अधिक तकनीकी है। लेकिन सोसिपेटर, जिसे सोपेटर के नाम से भी जाना जाता है, प्रेरितों के काम 20:04 में मैसेडोनिया के बेरिया से था। ये मैसेडोनिया वासी हैं जो आए हैं, जैसे पॉल मैसेडोनिया से आया है, वह कोरिंथ में आया है। वे उस संग्रह के लिए उसके साथ कोरिंथ आए हैं जिसे वे यरूशलेम ले जाएंगे। वे मैसेडोनिया से होते हुए वापस जाएंगे और फिर यरूशलेम जाएंगे। अधिनियम 20:04। इसके अलावा हमने इसमें शामिल मैसेडोनियन लोगों के बारे में पढ़ा जो उसके साथ अचिया आएंगे। कोरिंथ अखाया की राजधानी है। 2 कुरिन्थियों 9:04, 1 कुरिन्थियों 16:13। इसके अलावा उन्होंने लूसियस का भी उल्लेख किया है। अब वह नाम अधिनियम 20:04 में दूतों के बीच प्रकट नहीं होता है। क्या यह ल्यूक है या शायद यह कोई दूत नहीं है? शायद यह कोरिंथ का कोई स्थानीय आस्तिक है। खैर, प्रेरितों के काम 20:05-06 में ल्यूक स्पष्ट रूप से फिलिप्पी में समूह में फिर से शामिल हो गया। फिर हो सकता है कि उसने स्वयं से पहले शुभकामनाएं भेजी हों। लेकिन फिर यहाँ लूसियस यहूदी है। और कुलुस्सियों 4:11 के संदर्भ में ल्यूक एक अन्य जाति है। लूका चिकित्सक एक अन्य जाति है। और यह फिट बैठता है, वह अंश एक्ट्स के वर्णनकर्ता के लिए फिट बैठता है जो बाद में रोम में पॉल के साथ था। तो यहाँ लूसियस कौन है? शायद वह ल्यूक है, लेकिन हो सकता है कि वह कोरिंथ में सिर्फ एक आस्तिक हो। शायद वह यात्रा दल का हिस्सा नहीं है। जब मैं सभी साक्ष्यों को एक साथ रखने का प्रयास करता हूं, तो मैं यह सोचने को इच्छुक होता हूं। अध्याय 16:22। तेर्तियुस लेखक की ओर से नमस्कार। वह कहते हैं, मैंने ही यह पत्र लिखा है और मैं आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूं। यह उनके परिवार में घर में जन्मा तीसरा पुरुष था। तो हम कुछ बाधाओं और अंत को जानते हैं। इनमें से कुछ लोगों के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस मामले में हम जानते हैं कि वह इस घर में तीसरा जन्मा पुरुष था। इस तरह आपको सामान्यतः टर्टियस नाम मिलता है। अनपढ़ लोगों को उनकी मदद के लिए गांव के मुंशी की जरूरत होती थी। कभी कभी गांव के मुंशी स्वयं बमुश्किल साक्षर होते थे, लेकिन उन्हें लिखने में मदद करने के लिए लेखकों की आवश्यकता होती थी। बीच के लोग अक्सर उन शास्त्रियों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अधिक साक्षर थे। अमीरों को आम तौर पर पढ़ने और लिखने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में केवल 10% लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ने की क्षमता के विभिन्न स्तर थे। तो इस बारे में कुछ बहस है। और साथ ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। यह शहरी क्षेत्रों में अधिक था जहां अधिक स्कूल थे। यह पुरुषों के लिए महिलाओं आदि की तुलना में अधिक था। तो शायद कोरिंथ में यह शायद 30% है। और पढ़ने लिखने से आपका क्या तात्पर्य है? अधिकतर लोग लिख नहीं सके। कभी कभी वास्तव में जब उन्हें अपने नाम पर हस्ताक्षर करना होता है, तो यह कुछ पपीरी में उनके नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए एक एक्स की तरह होता है। लेकिन आपके पास ये चेतावनी शिलालेख होंगे या आपने ये कानून पोस्ट किए होंगे और शायद बहुत से लोग यह जानने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हो रहा था। लेकिन रोमन की तरह कुछ पढ़ने के लिए अधिकतर लोग पत्र नहीं पढ़ पाते थे। उन्हें इसे पढ़कर सुनाना होगा। सुसमाचार पढ़ना, उन्हें पढ़ना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन्हें पढ़नी होगी। इसलिए हालांकि अमीर लोग आम तौर पर पढ़ सकते थे, लेकिन वे अपने स्वयं के लेखकों का खर्च भी उठा सकते थे। वे कुछ उच्च शिक्षित दासों का उपयोग कर सकते थे। वहां बहुत से उच्च शिक्षित दास थे जो शास्त्री थे, उनमें से अधिकांश यूनानी थे। लेकिन फिर ऐसे स्वतंत्र लेखक भी थे जो पेशेवर थे। हम तर्टियस के मामले में ठीक ठीक नहीं जानते, लेकिन वह निस्संदेह एक आस्तिक था और इसीलिए वह अपना अभिवादन भेजता है। इस बिंदु पर मैं केवल श्लोक 23 से क्वार्टस का उल्लेख करने जा रहा हूँ। संभवतः वह परिवार में चौथा जन्मा पुरुष है, शायद तर्टियस का भाई है, लेकिन संभवतः उस मामले में उनका एक साथ उल्लेख किया जाएगा। तो बस चौथे जन्मे पुरुष, फिर से तर्टियस जैसा एक रोमन नाम। कोरिंथ में रोमन नाम इतने असामान्य नहीं थे, जो एक रोमन उपनिवेश था और वहां बहुत सारे रोमन नागरिक भी थे। गयुस चर्च के मेजबान, शुरुआत में 16:23। निःसंदेह वह वही गयुस है जैसा एक कुरिंथियों 1:14 में है। हालांकि जरूरी नहीं कि वह वही गयुस हो जिसे हम नए नियम में हर जगह देखते हैं। गयुस एक अत्यंत सामान्य रोमन नाम था। अब यहां कोरिंथ में गयुस है। वह चर्च का मेजबान है। इसका क्या मतलब है कि वह चर्च का मेजबान है? ये भी बहस का मुद्दा है। जब मैं कहता हूं कि यह बहस का विषय है, तो मैं बस कुछ विभिन्न पक्षों के प्रति निष्पक्ष होने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी, जैसा कि इस मामले में है, मैं इस बारे में कोई ठोस राय नहीं रखता कि क्या बिल्कुल सच है। हो सकता है कि उसके पास कोरिंथ के बाहर एक बड़ा विला हो। मैंने रोम में अपार्टमेंट का उल्लेख किया। संभवतः कोरिंथ में भी उनमें से बहुत सारे थे। कोरिंथ में कुछ घर खोदे गए थे जो अच्छे रोमन घर थे, जिनमें एक बैंक्वेट हॉल, एक ट्राइक्लिनियम और उसके बाहर एक बड़ा एट्रियम भी था, जहां छत से बारिश का पानी केंद्र में इकट्ठा होता था। आपके पास ऐसी जगहें थीं और उनमें शायद 40-50 लोग आ सकते थे, लेकिन इस समय तक कोरिंथ के चर्च में 40 या 50 लोगों की तुलना में बहुत अधिक लोग थे। इसलिए यदि वह पूरे चर्च का मेजबान है, तो कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है, यह कोरिंथ के बाहर है। यह शायद एक बड़े विला में है, जहां आप एक साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सैर होगी। यह ऐसा कुछ नहीं होगा जो वे हर समय करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी शायद चर्च एक साथ मिल पाता था। जो हो रहा है उसके बारे में यह सिद्धांतों में से एक है। सामान्य बैठकों के विपरीत, आम तौर पर सबसे बड़े घर जिनसे वे निपटते थे कपाल में होते थे, जो कोरिंथ का एक समृद्ध उपनगर था, और उन स्थानों पर आपको शायद 50 लोग मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी संभावना चर्च के मेजबान द्वारा है। वह कहते हैं, चर्च और मेरे लिए मेजबान का मतलब मूल मेजबान हो सकता है। अधिनियम 18:7 टिटियस न्याय। अब टिटियस जस्टिस हमें अपने ट्रायनोमेना में इस रोमन नागरिक के दो नाम देते हैं। उनका पहला नाम क्या था? खैर, गयुस एक पहला नाम था, एक उपनाम। तो वह गयुस टिटियस जस्टिस हो सकता था। इस स्थिति में आराधनालय से बाहर निकलने के बाद वह चर्च का मूल मेजबान था। वैसे यदि आपने 1 कुरिन्थियों 14 में व्याख्या सुनी है कि मुद्दा यह था कि महिलाएं चर्च की बालकनी से चिल्लाकर सवाल कर रही थीं, तो ध्यान रखें कि हम नहीं जानते कि उस समय आराधनालयों में बालकनी होती थीं। इस बात पर कुछ बहस है कि क्या उनके पास दूसरी मंजिल थी या नहीं। लेकिन इस समय हमारे पास जो वास्तुशिल्प साक्ष्य हैं, इस समय हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वे इसका सुझाव नहीं देते हैं। इससे पता चलता है कि यह बाद की मध्ययुगीन प्रथा थी, लेकिन इस पर भी बहस होती है। लेकिन इस समय चर्च किसी आराधनालय में बैठक नहीं कर रहा था। जिस समय उन्होंने एक कुरिन्थियों को लिखा, उस समय घरों में बैठकें हो रही थीं और उनके पास बालकनियां नहीं थीं। आम तौर पर वे एट्रियम या उसके जैसी किसी चीज को नजरअंदाज कर देते थे। तो शायद यह चर्च के आगे बढ़ने से पहले का मूल मेजबान गयुस टिटियस जस्टिस का घर है, या शायद यह सिर्फ अतिशयोक्ति है। शायद इसका मतलब यह है कि उन्होंने पॉल सहित कई लोगों की मेजबानी की। प्राचीन लेखकों द्वारा अतिशयोक्ति का प्रयोग आमतौर पर किया जाता था। हम जानते हैं कि यीशु ने इसका बहुत उपयोग किया था। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो सुई के छेद से ऊंट को निचोड़ने का प्रयास करें। दरअसल उस समय उनका मतलब शाब्दिक सुइयों से था। यदि आपने यह विचार सुना है कि यह शाब्दिक सुई नहीं थी, यह यरूशलेम में सिर्फ एक द्वार था जो इजरायली पर्यटन उद्योग के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह वह नहीं था जो तब था। कुछ लोग जिस द्वार की बात करते हैं वह मध्यकालीन द्वार है। यह यीशु के समय में भी अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, एरास्टस श्लोक 23 में भी वह एक एडाइल रहा होगा या उस समय लैटिन में इसका उच्चारण किया गया होगा, एडीले। लेकिन मैं बस इसका उच्चारण करने जा रहा हूं। ठीक है, शायद मुझे इसका उच्चारण आदर्श करना चाहिए, लेकिन फिर आप इसे आदर्शवाद के साथ मिला देंगे, तो मुझे बस एडिले कहना है। लेकिन एडाइले या एडाइल्स धनी थे। उन्हें धनराशि की प्रतिज्ञा करनी पड़ी, जैसे यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं इसे शहर को दान कर दूंगा। यह इस बात का हिस्सा था कि वे कैसे निर्वाचित हुए। हमारे पास एक शिलालेख है जिसके बारे में संभवतः अधिकांश विद्वान इस पीढ़ी के इरास्टस सहायक इस उच्च सार्वजनिक अधिकारी के बारे में सोचते हैं। खैर, यहाँ रोमियो 16:23 में हम इरास्टस शहर के कोषाध्यक्ष या शहर के प्रबंधक के बारे में पढ़ते हैं। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है? खैर, ऐसा लगता है कि यह एक असाधारण संयोग होगा यदि यह वही व्यक्ति नहीं है, लेकिन इस पर बहुत बहुत बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ओइकोनोमोस यह शब्द एडाइल का अनुवाद कर सकता है, या संभवतः यह एक कदम था जब वह बाद में एडाइल बन गया। यह उनके लिए एक नेता की भूमिका थी। दूसरों का कहना है कि एडिले इरास्टस यहां से भिन्न व्यक्ति था। यदि यह वही है जो अनुयायी बन गया, तो हो सकता है कि वह वास्तव में ईसाई नहीं है, लेकिन वह ईसाई समुदाय के संरक्षक के रूप में शुभकामनाएं भेजता है कि वह वहां कुछ शिक्षण प्रायोजित कर रहा है। जैसा कि हमने प्रेरितों के काम 19:31 में एशियाइयों के बारे में पढ़ा, जहां वे पॉल के मित्र थे। ठीक है, दोस्तों का उपयोग साथियों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है जो संरक्षक या प्रायोजक हो, जैसे कला का प्रायोजक या इफिसस में किसी बहुत लोकप्रिय शिक्षक का प्रायोजक। हो सकता है अधिनियम 19:31 में यही चल रहा हो। हो सकता है कि यहाँ यही हो रहा हो। वह सिर्फ एक प्रायोजक हो सकता है। समुदाय अच्छा काम कर रहा है और वह रोम में इस समूह के समानांतर समुदाय को अपनी शुभकामनाएं भेजता है जो उसे पसंद है। लेकिन प्रेरितों के काम 19:22 में हम इरास्टस नाम के एक आस्तिक के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि उसे इफिसुस से वहां भेजा गया था, इसलिए संभवतः वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पॉल के साथ यात्रा की थी। यदि वह कुरिन्थ से होता तो वह पहले ही पॉल के साथ एक लंबा सफर तय कर चुका होता। तो यदि वह यहां जैसा ही इरास्टस है तो उसके पास कुछ क्षमता होनी चाहिए। उसे यात्रा करने में सक्षम होना था। आम तौर पर आप एक सिटी मैनेजर के बारे में सोचेंगे। कार्यालय एक वर्ष के लिए हो सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सार्वजनिक गुलाम हो सकता है और उस पद को भर सकता है। और निश्चित रूप से आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो रोम में होगा, या मुझे खेद है इस मामले में कोरिंथ में, जो बहुत अधिक यात्रा नहीं कर रहा होगा क्योंकि वे कार्यालय के लिए प्रचार कर रहे होंगे, या वे जब तक वह ईसाई होने के कारण समुदाय के पक्ष से वंचित नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर बहुत सारे कर्तव्य हैं जैसे वे वहां थे। या शायद वह स्वतंत्र रूप से इतना अमीर था कि वह यात्रा कर सकता था, वह जो चाहता था वह कर सकता था और अन्य चीजें छोड़ सकता था। लेकिन यह इरास्तुस को एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति बना देगा क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि वह निम्न सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ यात्रा करने के लिए तैयार था इत्यादि। पॉल ने इसे मंजूरी दे दी होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इरास्तुस इतना असाधारण था या नहीं। यदि वह अनुचर होता तो शायद नहीं, लेकिन हो सकता है, हमें पता नहीं। वह भी ऐसा व्यक्ति है जो कोरिंथ में रहता है। पॉल उसे 2 तीमुथियुस 4:20 में कोरिंथ में छोड़ देता है। खैर, हमारे पास इस बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको उत्तरों के बजाय प्रश्नों के साथ छोड़ने जा रहा हूं। मेरी सोच शायद यह वही इरास्तुस है जो शहर का प्रबंधक था, जो एक सहायक था, लेकिन वह एक संरक्षक रहा होगा। शायद वह आस्तिक हो गया, लेकिन फिर इसे एक्ट्स के इरास्तुस के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मुझे नहीं पता। परंतु इरास्तुस नाम के और भी लोग थे जो हमारी समस्या का समाधान कर सकते थे। शायद ये 3 अलग अलग इरास्तुस हैं, हमें पता नहीं। अंतिम स्तुति श्लोक 25-27 प्रेरितों के काम की पुस्तक का वास्तविक निष्कर्ष है। जैसे वह अधिनियम 9-11 विशेष रूप से 11:01-32 को प्रशंसा के स्तुतिगान के साथ समाप्त करता है, 11:33-36 वह पूरे पत्र को अंतिम प्रशंसा के साथ समाप्त करने जा रहा है। यह कुछ गैर पॉलीन नहीं है, वह ऐसा पहले पत्र में करता है। लेकिन एक पाठ्य प्रश्न है जहां विद्वान बहस करते हैं, क्या यह वास्तव में रोमनों को लिखे पत्र का मूल अंत था या इसे बाद में जोड़ा गया था। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि यह मूल रूप से पॉल का है। ऐसा लगता है कि यह पॉल की अपनी सोच पर फिट बैठता है। ऐसा लगता है कि यह उस तरीके से फिट बैठता है जिस तरह से पॉल चीजों को अलंकारिक रूप से डिजाइन कर सकता था। इसे किसी बाद के लेखक द्वारा जोड़े जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि पॉल ने स्वयं रोम पहुंचने के बाद इसे बाद में जोड़ने का निर्णय लिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह अधिक पॉलिन लगता है। अध्याय 15 श्लोक 14-33 अध्याय 1 श्लोक 8-15 के अक्षर से पहले के विचारों को दोहराएं। खैर, यहाँ 16:25-27 पहले के विचारों को याद दिलाता है, खासकर अध्याय 1 छंद 2-5 तक। हम उन पर बाद में गौर करेंगे, लेकिन पहले मैं पाठ्य मुद्दे से निपटना चाहता हूँ। क्या यह पत्र का मूल भाग था? विद्वान वास्तव में इस पर विभाजित हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे पहले पाठ्य आलोचना के बारे में कुछ समझाना होगा। नकल करने वाले गलतियां कर सकते हैं और ये गलतियां समय के साथ बढ़ सकती हैं। मान लीजिए पॉल ने रोमियों को एक पत्र लिखा, खैर कोई इसकी प्रतिलिपि बनाता है और वे कुछ गलतियां करते हैं, कोई और उसकी नकल कर लेता है, उससे कुछ अलग गलतियां हो जाती हैं, कोई और उसकी नकल करता है तो वह अलग गलती करता है। पहली प्रति पर आधारित सभी प्रतियों में संभवतः पहली प्रति की गलतियां शामिल होंगी यदि वे मूल की जांच नहीं कर पाते हैं इत्यादि। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी प्रतियों में अधिक से अधिक गलतियां होंगी। अब आप में से उन लोगों के लिए जो पाठ्य आलोचना से परिचित नहीं हैं या जिन्होंने अपनी बाइबल में पाठ्य नोट्स पर ध्यान नहीं दिया है, ऐसे विद्वान हैं जो इस पर काम करते हैं और वे यह पता लगाते हैं कि इस पर सबसे अधिक पढ़ने की संभावना क्या है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, ठीक है, अगर यह वास्तव में सच है तो इसे बिल्कुल सही तरीके से कॉपी किया जाना चाहिए था, और हमारे पास अन्य चीजें हैं जो बिल्कुल सही तरीके से कॉपी की गई हैं। खैर, आपको यह दिखाने के लिए उन अन्य चीजों के साथ बस इतना करना है कि उन्हें गलत तरीके से कॉपी किया जा सकता है, और बस उन्हें कॉपी करना है और कुछ गलतियां करना है। यदि आप शाही दरबारों में किसी चीज की नकल करते हैं और गलती करते हैं तो आप उसे नष्ट कर देते हैं। इसमें एक अंतर है, आप इसे मानकीकृत करने जा रहे हैं। जो लोग एक निश्चित दस्तावेज को शाही अदालतों में उस तरह से मानकीकृत किए जाने के बारे में बात करते हैं, वे अक्सर उस दस्तावेज के बारे में सोचते हैं जिसे तीसरी खिलाफत में मानकीकृत किया गया था, यानी शायद किताब के मौखिक रूप से अस्तित्व में आने के एक पीढ़ी बाद, इसलिए इसे थोड़ा बाद में मानकीकृत किया गया था। लेकिन नए नियम के मामले में इसकी नकल शाही अदालतों में नहीं की गई थी, इसे उत्पीड़न की शर्तों के तहत कॉपी किया गया था। हमारे पास संदेश का सार है। हमारे लिए, कुछ समूहों के लिए, किसी पाठ के पवित्र होने का अर्थ है कि वे उसे मूल भाषा में पढ़ सकते हैं, इत्यादि। ईसाइयों के लिए हम पाठ्यचर्या के बारे में एक अलग तरीके से सोचते हैं। हम इसे पाठ के संदेश के रूप में देखते हैं, यह हमें क्या कहना चाहता है, और पाठ का संदेश सामान्यतः खराब नहीं होता है। अब कभी कभी मैं पाठ संबंधी मुद्दे की परवाह किए बिना आपको पाठ के संदेश को कुछ विस्तार से समझाने में सक्षम नहीं होता हूँ। यह कोई पाठ्य समस्या नहीं थी, और ऐसा अन्य प्रकार के दस्तावेजों के साथ भी होता है। लोग व्याख्या के अनिश्चित स्तरों पर असहमत होंगे, लेकिन नए नियम में हमारे पास मौजूद अधिकांश पाठ्य संस्करण गौण हैं। वे छोटी मोटी समस्याओं से निपटते हैं। नए नियम में केवल दो लंबे हैं, और हम जानते हैं कि वे क्या हैं। दोनों ही मामलों में हम मार्क 16:9-20 को जानते हैं। नए नियम का लगभग कोई भी विद्वान आपको बताएगा कि यह संभवतः मूल पाठ का हिस्सा नहीं है। मैं वास्तव में उस एक के बारे में दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक आशावादी हूँ, जॉन 7:53-8:11, जहां यह विषय को पूरी तरह से बदल देता है। यह संदर्भ को बाधित करता है, विषयांतर के रूप में नहीं, बल्कि यह वास्तव में त्योहार के अंतिम दिन के संदर्भ में संदर्भ को बाधित करता है, कुछ चीजें जो हम निम्नलिखित संदर्भ में देखते हैं। यह न केवल पाठ्य रूप से संदिग्ध है, बल्कि यह उन शब्दों का उपयोग करता है जिनका उपयोग जॉन के गॉस्पेल में कहीं और नहीं किया गया है, ऐसे शब्द जो सिनोप्टिक से उपयोग किए गए थे। अब यह एक सच्ची कहानी हो सकती है। दोनों ही मामलों में वे प्रारंभिक परंपराओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे क्या हैं। आम तौर पर यदि आपके पास ओल्ड किंग जेम्स के अलावा कोई अनुवाद है तो आप उसे अपने अनुवाद के नोट्स में पाएंगे। किंग जेम्स में 1:05:07 इसलिए है क्योंकि किंग जेम्स का अनुवाद मुख्य रूप से इरास्मस के ग्रीक पाठ के एक निश्चित संस्करण से किया गया था। इरास्मस ने मूल रूप से इसे छोड़ दिया था। कुछ लोग जो लैटिन वल्गेट पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, देखो यह यहाँ लैटिन में है, आपने इसे अपने यूनानी पाठ से बाहर कर दिया क्योंकि आप ट्रिनिटी में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, मैं त्रिमूर्ति में विश्वास करता हूँ। खैर, वास्तव में शायद यह प्रश्न में था। मुझे नहीं पता कि वह ट्रिनिटी में विश्वास करता था या नहीं, लेकिन मैं ट्रिनिटी में विश्वास करता हूँ। लेकिन किसी भी मामले में, इरास्मस ने कहा, यह मेरी किसी भी पांडुलिपि में नहीं है। यदि आप मुझे एक पांडुलिपि दिखा सकते हैं जिसमें यह है तो मैं इसे डाल दूंगा। खैर, उन्हें एक पांडुलिपि मिली। ऐसा लगता है कि यह इसी अवसर के लिए लिखा गया है। इसलिए उन्होंने इसे एक लंबे फुटनोट के साथ लिखा जिसमें बताया गया कि उन्हें बेईमानी का संदेह था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वह ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अपने अगले संस्करण में उन्होंने इसे छोड़ दिया, लेकिन किंग जेम्स का उस संस्करण से अनुवाद किया गया है, लेकिन वह एक श्लोक की तरह है। आपके पास ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। आज के अनुवाद वास्तव में मुझे लगता है कि सबसे पहले किंग जेम्स के पास वास्तव में कुछ पाठ्य जानकारी थी, लेकिन इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे इस तरह से मुद्रित करना महंगा था इत्यादि। लेकिन आज अधिकांश अनुवादों में यह एक महत्वपूर्ण पाठ्य विचलन है, वे आपको बता देंगे। यहाँ पाठ्य प्रश्न मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश पांडुलिपियों में मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ने और इसके बारे में बात करने दीजिए। कुछ पांडुलिपियों में यह है, यह ईश्वर की अंतिम स्तुति है। कुछ पांडुलिपियों में यह 1423 के बाद है, या उनके पास यह यहाँ और 1423 के बाद है। खैर, प्रारंभिक काल में पांडुलिपियों के कुछ भ्रम के कारण यह उनके पास 1423 के बाद हो सकता है। 1423 में मार्सियोन का अंत हो गया, लेकिन मार्सियोन एक अत्यधिक अकेली आवाज थी। मेरा मतलब है, उन्होंने रोमन साम्राज्य या कहीं और चर्च के बहुमत के लिए बात नहीं की। कुछ पांडुलिपियों में इसे छोड़ दिया गया है, लेकिन अधिकांश प्रारंभिक पांडुलिपियों में इसे शामिल किया गया है और इसे व्यापक भौगोलिक समर्थन प्राप्त है। यदि आप पाठ्य आलोचना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो एक बात यह है कि यदि आपके पास यह कई अलग अलग स्थानों पर है, तो यह उन अलग अलग स्थानों से बाद में नहीं हो सकता है जहां यह दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने इसे कॉपी नहीं किया है। जॉर्जिया या आर्मेनिया के चर्च ने इसे रोम के चर्च से कॉपी नहीं किया है, या कॉप्टिक पांडुलिपियों ने इसे निश्चित रूप से बीजांटिन या उसके जैसी किसी चीज से कॉपी नहीं किया है। तो वैसे भी व्यापक भौगोलिक समर्थन प्रश्न पर विद्वान काफी हद तक समान रूप से विभाजित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन विद्वान पाठ आलोचकों से कहीं अधिक हैं, लेकिन पत्र संभवतः 16:23 में क्वार्टस को अभिवादन के साथ समाप्त नहीं हुआ। 16:24 वास्तव में एक बाद का संस्करण है, लेकिन किसी भी स्थिति में 16:25 से 27 तक। यहाँ मैं इस चार्ट को अपनी टिप्पणी से ले रहा हूँ, खासकर क्योंकि जब मैंने इन पावर पॉइंट स्लाइडों को समाप्त किया था तब सुबह के 2 रहे थे। 2 में यह मेरा तीसरा कोर्स है, इसीलिए अंत में मैंने आखिरी कुछ स्लाइडों में अपनी टिप्पणी उद्धृत की है। परंतु परमेश्वर तुम्हें मेरे सुसमाचार के अनुसार स्थापित करने में सामर्थी है। यह रोमियो में पहले के बिंदुओं को उद्घाटित करता है, जैसे कि जहां उन्होंने कहा था, मैं लालायित हूँ, मैं ईश्वर की आत्मा द्वारा कुछ अनुग्रह उपहार साझा करने की लालसा रखता हूँ ताकि आप स्थापित हो सकें। वह 16:25 में मेरे सुसमाचार के बारे में बोलता है। खैर, पहले उन्होंने कहा था, भगवान मेरे सुसमाचार के अनुसार लोगों का न्याय करेंगे। पॉल सुसमाचार परोसता है और इसे उनके साथ साझा करना चाहता है। यीशु मसीह का उपदेश 16:25 उन्होंने पत्र में पहले अपने उपदेश के बारे में बताया था। 16:25 में सुसमाचार रहस्य का रहस्योद्घाटन, ठीक है, पहले उन्होंने सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होने की बात कही थी। 1625 में अन्य जातियों को शामिल करने का रहस्य, उन्होंने पहले इस रहस्य के बारे में बात की थी कि अन्य जातियों को कैसे शामिल किया जाता है। ईश्वर का रहस्य अब भविष्यवक्ताओं के धर्मग्रंथों से प्रकट हुआ है। खैर, परमेश्वर की धार्मिकता अब कानून और भविष्यवक्ताओं से प्रकट होती है, 3:21। और पॉल की खुशखबरी का वादा पहले से ही भविष्यवक्ताओं 1:01 और 2 में किया गया था। हमने वहां इसके बारे में और 1:17 में रहस्योद्घाटन के लिए सर्वनाश के उसके उपयोग के बारे में बात की। पॉल जो उद्देश्य लाना चाहता है वह 1:626 में सभी राष्ट्रों के बीच विश्वास की आज्ञाकारिता है और 1:05 और 15:18 में उद्देश्य है। हालांकि इसका सूत्र थोड़ा छोटा है, उद्देश्य सभी राष्ट्रों के बीच विश्वास की आज्ञाकारिता है और वह कुछ अध्यायों में विशेष रूप से 6-8 तक आज्ञाकारिता के बारे में बहुत सारी बातें करता है और फिर विशेष विवरण जैसे 12-14 में। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा सर्वदा होती रहे 16:27। परमेश्वर की महिमा सदैव होती रहे 11:36 उसकी अतुलनीय बुद्धि के लिए। ईश्वर की महिमा एक उचित स्तुति थी जिसमें कार्य की समाप्ति भी शामिल थी। हम इसे 4 मैकाबीज में देखते हैं। हम इसे जूड के अंत में देखते हैं। निःसंदेह आमीन स्तुति के स्वाभाविक निकट था, कुछ पुस्तकों के स्वाभाविक निकट था। कभी कभी शास्त्रियों ने इसे केवल यह कहने के एक तरीके के रूप में जोड़ा, हाँ यहाँ जो लिखा गया है उससे मैं सहमत हूँ तथास्तु। लेकिन किसी भी मामले में इस पत्र में भगवान के सम्मान और नाम के लिए पॉल की लगातार चिंता भगवान की अंतिम प्रशंसा में चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, जिस तरह से भगवान ने इतिहास की व्यवस्था की है ताकि अन्य जातियों के साथ साथ यहूदी लोग भी विश्वास के माध्यम से इसराइल के भगवान का पालन कर सकें। यीशु मसीहा में इस स्तुतिगान में कुछ बिंदुओं पर 1:16 और 1:17 से भी अधिक स्पष्ट रूप से पॉल कुछ मुख्य विषयों को एक साथ जोड़ता है जो इस प्रसिद्ध पत्र को एक साथ बांधते हैं। इस पत्र में पॉल ने यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक ईश्वर को पहचानने के लिए बुलाया और यदि यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल एक ईश्वर के साथ हो गया है तो हमारा एक दूसरे के साथ भी मेल हो गया है तथास्तु। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 16:21-27 पर 17:18 है।